सुधीजनों दिव्यों, इंसान जब से जन्म लेता है दो ही चीज के लिए संघर्ष करता है, कि उसे सुख चाहिए और उसका दुख दूर हो। हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा जो दुख है परेशानी है वो दूर हो और हमें सुख मिले। चोर चोरी भी इसीलिए करता है, साधु त्याग भी इसीलिए करता है, पुलिस बदमाशों को इसीलिए पकड़ती है, बदमाश बदमाशी भी इसीलिए करते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि सुख चाहिए। कोई सुख ढूंढता है छोड़ करके, कोई सुख ढूंढता है पकड़ करके। और जो भी हमारा ज्ञान विज्ञान कला साहित्य संस्कृति दर्शन इतिहास जो कुछ भी इंसान का है, उनका मूल उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति का दुख दूर हो, उनको सुख अधिक से अधिक मिले। यहां तक कि जो हमारे अलग अलग संप्रदाय बने, धार्मिक संप्रदाय बने, उनका भी यही उद्देश्य है कि व्यक्ति को सुख मिले, दुख दूर किया जाए। और आप जब अलग अलग चैनल्स देखते हैं अलग अलग संप्रदाय के, उसमें आपको यही बोल के फंसाने की कोशिश की जाती है, आप हमारे यहां आएंगे, हमारी देवता को मानेंगे, हमारे बातें मानेंगे तो आपका सुख मिलेगा, आपके दुख दूर हो जाएगा। इसी कारण से लोग मिरेकल में भरोसा करते हैं और लोग मिरेकल दिखा करके करोड़ों कमा लेते हैं। जादू टोना से लेकर के धार्मिक शिष्य बनाने का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति को दुख दूर करना है, सुख पाना है। मंदिर मस्जिदों का भी यही उद्देश्य है, हमें हमारे यहां आओगे तो हम सुख देंगे, आपका दुख दूर करेंगे। जितने तरह के स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, जरूरी नहीं धर्म शास्त्र, वो आपका विज्ञान शास्त्र हो, कला शास्त्र हो, खाना बनाने का शास्त्र हो, गार्डनिंग करने का शास्त्र हो, वो क्यों है कि आप किसी भी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे उसमें सुख मिले, सुकून मिले, मेरी जो परेशानियां या दुख है वो दूर हो। तो जन्म से मृत्यु तक जो अंदर हमारे काम करता है लक्ष्य, वो सुख पाना और दुख को दूर करना। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो केवल सुखी हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा सुखी है, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमेशा दुखी हो। वो धनी हो या गरीब हो, ज्ञानी हो या अनपढ़ हो, बड़े ऊंचे पद पर बैठा हो या कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, कोई जानता नहीं हो, जंगल में झोंपड़ी में रहता हो, ऐसा कुछ नहीं। सुख या दुख किसी धनी गरीब ज्ञानी अज्ञानी में भेद नहीं करता। जिसकी रोज करोड़ों की कमाई है वो भी दुखी मिलेगा, उसको भी रात को सोते समय नींद की गोली खानी पड़ती है, दो दो तीन तीन बजे तक नींद नहीं आता, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, डायबिटीज की बीमारी है, ये तनाव के कारण है। वो जो झोपड़ी में रहने वाला जिसकी रोज की कमाई $1 भी नहीं, वो भी दुखी है या सुखी है? ज्यादातर हर आदमी अपने से विरोधी व्यक्ति को देख करके लगता है ये ज्यादा दुखी होगा या सुखी होगा। धनियों को हमेशा लगता है ये गरीबों को जीने का कोई हक नहीं, ये कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, ये क्या जाने सुख क्या होता है, सुख तो हम भोगते हैं। पर पता चला वो जो मजदूर है दिन भर मेहनत करके आता है, गंदे कपड़े में रहता है, झोपड़ी में रहता है, दिन भर मेहनत करता है, मेहनत करके शाम को आता है अपनी झोपड़ी में, आटा दाल जो भी रोज की खरीद करके लाता है क्योंकि अगले दिन के लिए उसके पास नहीं होता, रोटी बनाता है, सब्जी बनाता है, साथ में पुराना रेडियो चल रहा होता है, गाने चल रहे होते हैं, गाना सुन के वो खाना बनाता है, खा करके मस्ती में सो जाता है, सुबह उठ के काम पर चले जाता है। हमें लगता है पैसे जिनके पास है ये झोपड़ी में रहने वाला बड़ा दुखी होगा, पर पता चला उसको भी लगता है कि ये जो बड़े बड़े गाड़ियों में जाते हैं ये दुखी होंगे, क्योंकि इनके घर में जब काम करने जाते हैं पता लगता है इनके बेडरूम में इतनी दवाइयां रखी होती है, ये दवाइयां खा खा कर जीते हैं बड़े लोग। हर आदमी दूसरे को सोचता है कि ये ज्यादा दुखी होगा या सुखी होगा, पर असलियत में हर आदमी दुखी है, कम है, अधिक है, कभी है, कभार है। लोगों को लगता है जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं वो सुखी होंगे, जो मंच पर बोलता है वो बड़ा सुखी होगा, पर महीने भर साथ रहते हैं वो तो उससे भी ज्यादा दुखी है जो नहीं पढ़ा है। और ये सच बात है कि जितनी आत्महत्या की आप अगर सर्वे करेंगे उसमें अनपढ़ गरीब लोगों की संख्या कम मिलेगी, पढ़े लिखे खाते पीते घर के लोगों की संख्या ज्यादा मिलेगी। वो अपने दुख से इतने परेशान हुए कि मरने को तैयार हो गए। सुख या दुख ना ज्ञान देखता है, ना धन देखता है, ना पद देखता है, ना प्रतिष्ठा देखता है, क्योंकि सुख और दुख बाहरी दुनिया के कारण होता नहीं है। हमें लगता है कि मैं अगर ज्यादा कमा लूं तो सुखी रहूंगा, ज्यादा पढ़ लो तो सुखी रहूंगा, ज्यादा ऊंचे पद पर चला जाऊं तो सुखी रहूंगा, पर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा जिसके पास धन होने से वो सुखी है या बड़े पद पर बैठने से सुखी है, ऐसा दिखता नहीं है। सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, ये चक्र की तरह है। महाभारत में आता है सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चक्रवत परिवर्तन्ते, वो व्हील की तरह घूमते रहते हैं चाक की तरह, सुख दुखानिच सुखानिच, सुख और दुख उस चक्र की तरह हरेक के जीवन में आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो क्या है ये सुख और दुख, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसको दुख कहें सुख कहें? किसी को लगता है धन नहीं है इसीलिए दुखी, किसी को लगता है ज्ञान नहीं है इसीलिए दुखी, किसी को लगता है मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरा कोई भाव नहीं है, इज्जत नहीं है इसीलिए मैं दुखी। हमारे शास्त्रों में वैशेषिक दर्शन एक फिलोसफी है, 6 दर्शनों में से उसमें इसकी परिभाषा डेफिनेशन की गई सुख और दुख क्या है। बोले अनुकूल वेदनीयता सुखम, प्रतिकूल वेदनीयता दुखम। मतलब आपके मन को जो अच्छा लगे वही सुख देता है, जो आपके मन को अच्छा ना लगे वो आपको दुख देता है। वस्तु कोई भी हो अगर आपके मन के विरोधी है वो दुख देगा, वो आपके मन के अनुकूल हो तो सुख देगा। मेरा मन का अनुकूल क्या है? विद्या पढ़ना लिखना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? आप सब कहेंगे अच्छी चीज है, पर जिसको पढ़ने में रुचि नहीं है जब वो स्कूल जाता है बड़ा दुखी होता है, टीचर जब क्लास में आता है वो बड़ा दुखी होता है, पर जिसको पढ़ने में रुचि है अगर टीचर नहीं आता वो दुखी होता है, वो कंप्लेंट करता है कि टीचर्स क्लास में क्यों नहीं आया, और जिसको पढ़ने में रुचि नहीं वो खुश होता है कि टीचर और दो चार महीने छुट्टी क्यों नहीं लिया। पढ़ाई में सुख या दुख नहीं है, आपको अगर पढ़ाई में रुचि है, आपका मन अगर उसके अनुकूल है तो पढ़ाई अच्छी लगती है, अगर प्रतिकूल है तो आपको बुरा लगता है। धन अच्छा नहीं है कि बुरा नहीं है, अगर मुझे धन अच्छा लगता है तो मेरे पास धन आता रहे तो मैं खुश होता जाता हूं, और जिनको धन पसंद नहीं है, जो तपस्वी है जिसमें वैराग्य का भाव है, वो धन देख करके भागता है। लोग धन छोड़ के, हमारी संस्कृति में तो लाखों लोग धन संपत्ति परिवार सब संसार छोड़ के जंगल की ओर भागते थे, लोगों से दूर रहते थे, कोई मुझे मिले नहीं, मेरी प्रशंसा न करे क्योंकि इससे मेरी बुराइयां बढ़ती है, मेरी तारीफ से, वो अपनी तारीफ से बचने की कोशिश करते थे। धन अगर सुख देता तो दुनिया के हर धनी, जिसके पास भी कम बहुत धन है, सब सुखी होते हैं। और जो बहुत गरीब है वो जिंदगी भर वो सारे आत्महत्या करके मर जाते, ऐसा नहीं होता। मन का प्रतिकूल होने पर दुख होता है, मन के अनुकूल होने पर सुख होता है। अगली परिभाषा महाभारत में सुख और दुख का, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार सुखम, जो मुझे चाहिए, जो मेरी डिजायर्ड है, जो मेरी इच्छा है, जिसको मैं पाना चाहता हूं वो अगर मुझे मिले, और जो मैं पाना नहीं चाहता हूं वो अगर मेरे से दूर रहे तो मुझे सुख मिलता है। जिसे मैं पाना नहीं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए वो मेरा दुख का कारण है, जिसे मैं पाना चाहता हूं वो ना मिले तो मेरे दुख के कारण है। बाप बेटे से प्यार करता है, उसके कारण झूठ बोलता है, कभी कभी बुराइयां करता है, बहुत कुछ छुपाता है। जब वही बच्चा मां बाप के खिलाफ जाता है तो कितने बाप हैं जो उनको मार डालते हैं। पिछले हफ्ते बेंगलुरु में एक छोटी सी बेबी बच्ची 6-7 महीने की कुछ होगी, उसके बाप ने छुपा करके मार डाला, उसको टॉर्चर करके। उसकी मां ने केस किया उसके खिलाफ, क्यों? उसको बेटा चाहिए था, बेटी पैदा हो। बेटी बुरी चीज नहीं है, पर क्योंकि उसको पसंद नहीं था इसलिए उसके लिए वो दुखदायक बना। भारत में ऐसे कुछ राज्य हैं जहां या बेटा या बेटी को मार दिया जाता है अगर वो अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ किसी दूसरी जाति से शादी करते हैं। जिस बेटा या बेटी के लिए मां बाप सब कुछ करते थे अभी तक, जिनके लिए रात को सोना छोड़ देते थे, जिनके लिए दिन रात मेहनत करके कमाते थे, उसी बेटा और बेटी आज दुख देने लगा, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब बच्चों में आपकी खुशी नहीं छुपी है, आपका दुख नहीं छुपा, छुपा है बच्चे कब तक आपके अनुकूल हैं। और बच्चे जिस दिन प्रतिकूल हो जाते हैं वो आपको दुख देता है, हो सकता है मारते नहीं है क्योंकि आप सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं, पर आपको दुख मिलता है जब बच्चे आपके अनुसार काम नहीं करते। और अगर आपके गुलाम की तरह आपकी बात मानते हैं तो आपको लगता है ये बड़ा अच्छा, मैं बड़ा धन्य हूं मुझे ऐसे बच्चे मिले। धन्य किस बात के लिए? क्योंकि बच्चे आपके गुलाम बने, मतलब आपकी हर अच्छी बुरी अनपढ़ पढ़ा लिखा सोचा हुआ अनसोचा हुआ बात को मानने को तैयार है। क्योंकि मुझे लगता है, मैं क्योंकि बाप हूं, जो कुछ मैं पढ़ा हूं, जानता हूं, समझता हूं वो सही है। तू क्योंकि बेटा या बेटी है तो कुछ भी जानता है समझता वो सही नहीं है। अगर तू मेरी बात के हिसाब से चलता है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं दुनिया को बोलता हूं, देखो मेरे बच्चे मेरी बात पर चलते हैं। अगर वो मेरी बात नहीं मानते, मुझे लगता है मैं कौन से जन्म का पाप किया था ऐसे बच्चे मिले। क्या हो गया आपके बच्चों में? कल तक तो बड़े प्यार कर रहे थे, आज क्यों इतना खुंदक है? सिर्फ इतना कि कल तक वो आपके अनुकूल थे और आज वो आपके प्रतिकूल हो गए। सुख दुख में बदल गया। सुख ना धन में है ना संतान में है, सुख आपके मन में है। आपको पहले भी उदाहरण दिया हूं, आपको रसगुल्ले पसंद है, आपको मिठाई पसंद है, आपको कोई खास तरह के खाना पसंद है, आप किसी के घर गए, आपके रिश्तेदारों ने पूछा आपको कौन सा खाना पसंद है, आपने कहा मुझे बड़ा हलवा पसंद है, तो उसने खूब सारा हलवा बनाया जो 5-7 दिन रहेंगे, सुबह नाश्ते में, दिन के लंच में, रात के डिनर में, सुबह शाम आपको हलवा दिया। चौथे पांचवें दिन आप भागने की कोशिश करते हैं, हलवा देखते ही हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दो आगे से नहीं बोलूंगा। क्या हो गया? जिस दिन आए थे तो बड़े खुशी में बोला था हलवा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, पांचवें दिन पर क्या हो गया? तो हलवा में आपकी टेस्ट नहीं था, आपके मन में था। जिस दिन हलवा आपके अनुकूल था उस दिन आपको अच्छा लगा, आज आपका मन वो हलवा के प्रतिकूल हो गया तो उस हलवा को देखकर आपको उल्टी आने लगती है। फिर आप कहेंगे ये मन क्या चीज है, ये मन ही क्यों, कल तक जो हलवा को पसंद करता था आज क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? कल तक तो आप मेरे दोस्त थे, आज इतने भयंकर दुश्मन है कि आपको गाली दे देकर मेरा जीव तकता नहीं है। व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति में तो कोई बदलाव नहीं आया, दोस्त में कोई बदलाव नहीं आया, आपके मन में बदलाव आया। क्यों हुआ? मेरा मन ऐसा क्यों है? क्यों किसी को मारना पसंद है? क्यों किसी को बचाना पसंद है? किसी को कमाना क्यों पसंद है? किसी को छोड़ना क्यों पसंद है? मैं चाहता हूं छोड़ना पर मेरे से होता नहीं, उल्टा जहां मिलता है अच्छा बुरा एक नंबरी दो नंबरी करके मैं कमाना चाहता हूं। क्योंकि हम जिस तरह हमारा परवरिश हुआ है, जिस माहौल में, जिस परिवार में, जिस तरह के आसपास के वातावरण में, जिस तरह के दोस्तों के माहौल में मेरा परवरिश हुआ है, मेरा मन उसी तरह का बन चुका है। कभी कभी लोग बुरे माहौल में बढ़ने के बावजूद भी अच्छे होते हैं, अच्छे माहौल में बढ़ने के बावजूद बुरे होते हैं। बड़े सारे शराबियों के बच्चे बड़े अच्छे निकलते हैं, बड़े सारे अच्छे लोगों के बच्चे बिगड़े हुए निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर माहौल ही जिम्मेदार है तो अनपढ़ लोगों के बच्चे पढ़े लिखे निकलते हैं, पढ़े लिखे लोगों के बच्चे अनपढ़ निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर माहौल जिम्मेदार है तो हमारे जन्म जन्मांतरों के जो काम है, जो संस्कार है हमारे मन में, जिस तरह के काम हमने किया है, जिस तरह के सोच हमने पहले पाला है, जिसके मन पर संस्कार है, जो हम भूल चुके हैं कि हमने क्या किया था, क्या सोचा था, कितने जन्मों का संस्कार है जो हमारे हमारे मन पर हावी है, हमारा मन उसी तरह का बनता है, उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। फिर मेरे और आपका सुख दुख का की परिभाषा फिर अलग हो जाती है। जो मेरे लिए सुख देता है वो आपके लिए सुख नहीं देता है। मेरे लिए अगर लाउड स्पीकर में अपने घर में बड़े तेज आवाज में म्यूजिक चलता है मुझे अच्छा लगता है, जब तक मेरा कान फट ना जाए तब तक मुझे मजा नहीं आता। पर मेरे पड़ोसी को जब तक बिल्कुल कूल म्यूजिक ना हो, मेडिटेशन वाला म्यूजिक ना चले, उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों है? दोनों तो बगल अगल बगल में रहते हैं, बस कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, दो मीटर की दूरी पर रहते हैं, एक को इतना कानफोड़ू म्यूजिक में मजा आता है और एक को कानफोड़ू म्यूजिक में उसका नींद हराम हो जाता है, उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यह अंतर क्यों है? जिसने अपने आप को जैसे बनाया है पिछले कर्मों से, अभी से बचपन से जिस तरह के माहौल में, उसी तरह के हमारा पसंद और नापसंद होता है। जिस तरह का पसंद और नापसंद होता है उन्हीं चीजों में हमें सुख या दुख मिलता है। इसीलिए बड़ी जरूरी है बचपन से आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो, क्योंकि आगे जाकर वो सुख उन्हीं चीजों में ढूंढेगा। फिर आप रोते रहोगे कि इन गलत चीजों में ये सुख क्यों ढूंढता है, क्योंकि आपने ही शुरू में बचपन में हंसी मजाक में प्यार प्यार में यही सब तो खिलाया पिलाया सिखाया था। मां बाप बड़े हिपोक्रेट होते हैं ज्यादातर। बचपन में अपना दिखाने के लिए तो खूब रेस्टोरेंट में पिज्जा बर्गर खिलाते हैं। बच्चा जो मोटा हो जाता है और ओबेस के वो जो मोटापा के शिकार हो जाता है और वो बिना घर का खाना पसंद नहीं करता, फिर हमें फिर बच्चों को दोष देते हैं, ये बच्चा मेरा देखो खाना नहीं खाता, इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। पहले हमने ही इंटरेस्ट किया पैदा कराया अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में, अपने आप को अच्छा बाप बता साबित करने के चक्कर में। यह बड़ी सावधानी से ध्यान देनी चाहिए। बच्चा बचपन से जिस तरह के परवरिश में रहता है, आगे जाकर जिंदगी भर में वो वैसा ही बन जाता है। वो चाहकर भी अच्छा बन ही नहीं सकता अगर बुरा सोच पैदा हो चुका है, वो चाहकर बुरा बन ही नहीं सकता अगर उसके अच्छे संस्कार बन चुके हैं। तो वो पसंद और नापसंद उसी तरह का होता है। मेरा बच्चे रात को सोना पसंद नहीं करता, नाइट क्लब में पूरे रात बिताना पसंद करता है, सुबह 4 बजे आकर के सोता है और दिन में 11 बजे उठता है। पड़ोसी का बच्चा 10 बजे सो जाता है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, नहा धोकर ऑफिस जाता है। मैं परेशान हूं, ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे के साथ? क्योंकि आपने बचपन से उसको कौन सा संस्कार दिया, ये मायने रखता है। कि वो मेरी बात सुनी नहीं, तो आप मां बाप ऐसे क्यों हो कि आपकी बात कोई सुन ही नहीं पाया, उसके बाद क्यों सुना? किस्मत कुछ नहीं होता, ईश्वर की कृपा कुछ नहीं। अगर आप कैसे पले हैं, कैसे पालते हैं, तो सुख और दुख व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है, उसका मन किस तरह के संस्कार लेकर आया है। वो जो सुख और दुख है, मुझे किसी में सुख मिलता है या दुख मिलता है, दुख का कारण क्या है? हर आदमी दुख दूर करना चाहता है, सुख पाना चाहता है। दुख फिर क्यों होता है? महर्षि पतंजलि लिखते हैं, पुण्य पुण्य कर्माशय क्लेश मूल काम लोभ मोह क्रोध प्रभव। व्यक्ति के जीवन में जो दुख है वो 4-5 चीजों से आता है। उसका जो मूल है वो है काम, कामना, इच्छा है, डिजायरनेस, लोभ, ग्रीड, लालच, जितना है उससे ज्यादा पाने की चाहत। नहीं, वो तो हर आदमी चाहता है, तो चाहत है, जितने के लायक है उससे ज्यादा पाने की चाहत, गुस्सा और मोह, डिल्यूशन और अहंकार, जो ईगो है। ये 5 कारण है जिसके कारण व्यक्ति दुखी रहता है, जिंदगी भर दुखी रहता है। सब कुछ होने पर भी दुखी है, सब कुछ ना होने पर भी दुखी है। उसमें से पहला है काम। काम मतलब इच्छा या डिजायर। ये ध्यान रखिए, हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं इच्छा करके करते हैं। इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम बेड से उठते हैं, मन करता है तभी उठते हैं। इच्छा जरूरी है, पर इच्छा के नियंत्रण, रेगुलेशन बड़ा जरूरी है। दुनिया में हम दुखी क्यों है? एक व्यक्ति जो पैदल चलता है वो दुखी है, जो हवाई जहाज में उड़ता है, जिसका अपना जेट विमान है, वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होती है। जो पैदल चलता है वो दुखी है कि काश मेरे पास एक साइकिल होता, जिस दिन साइकिल उसके पास हो जाए उसको उस दिन सुख मिलेगा, बड़ा वो खुशी मनाएगा, दो दिन के बाद वो फिर दुखी होगा, मेरे पास कोई बाइक क्यों नहीं है। जिस दिन बाइक भी कमा लिया उसको एक दो दिन सुख मिलेगा, फिर वो दुखी घूमता फिरेगा बाइक चलाते हुए कि मेरे पास कार क्यों नहीं है। जिस दिन कार हो जाएगा उस दिन उसको एक दो दिन सुख मिलेगा, फिर दुखी मिलेगा क्योंकि मेरे पास लंबी कार क्यों नहीं है, महंगी कार क्यों नहीं है। जब महंगी कार भी आ जाए तो भी दुखी मिलेगा, मेरे पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है। प्राइवेट हेलीकॉप्टर वाला भी दुखी मिलेगा, मेरे पास जेट क्यों नहीं है। जेट वाला भी दुखी मिलेगा, मेरा अपना स्पेस शटल क्यों नहीं है। स्पेस शटल भी हो जाए, मेरे पास दो चार ग्रहों में जब मर्जी तब जाऊं ऐसा कुछ क्यों नहीं है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हम जिंदगी भर दुखी रहते जाते हैं, कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती है, इसीलिए हमारे दुख कभी खत्म नहीं होते। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे उनका जो सबसे मूल सूत्र था, कामना ही दुख का जड़ है, कामना के विनाश में दुख का विनाश होता है। हमारे यहां संस्कृत में बड़े कवि हुए, बहुत बड़े कवि भर्तृहरि नीति शास्त्र के वक्ता हैं, वो लिखते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, पता चला कि भोगी हमें भोग कर चले गए। हमने जो जिंदगी भर कमाने के लिए तपस्याएं की, हमने नहीं की, तपस्या हमें ही कर गई। कालो न यातो वयमेव यात, टाइम पास करते हैं ना। कभी कहते हैं टाइम को आप पास नहीं करते हो, टाइम ही आपको पास करके चला जाता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, प्यास है कमाने की, वो कभी बुढ़ी नहीं हुई, हम ही बुढ़े हो गए। इसको किसी हिंदी कवि ने अनुवाद किया है, तृष्णा तो बुढ़ी ना हुई, हम ही बूढ़े हो गए, भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें भुगताए गए। तपते रहे तपो को हम क्या, तप ही हमको ताप गए, रहे सोचते काल काटने, काल हमें ही काट गया। तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छाएं, तू तो हुई ना बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाट गया, पड़ी झुरियां मुख के ऊपर, बाल सफेदी सिर आई, हुए शिथिल है अंग अंग, पर तृष्णा तरुणा इच्छाई। मैं बुढ़ा होता गया, मेरी इच्छाएं जवान होती गई। चाणक्य शंकराचार्य लिखते चरपटिका मंजरी में, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर गल गए, बाल पक गए, हाथ में लाठी आ चुका है, हाथ पैर कांपते हैं, पर मेरी जो इच्छाएं हैं, पाने की चाहत है, वो अब भी जवान है और बहुत कुछ पाने की इच्छा है। मृत्यु दस्तक दे रहा है तो भी मैं खत्म नहीं होने वाला। तो शंकराचार्य उपदेश करते हैं, कह करके बात खत्म करता हूं, मूढ़ जही धनागम तृष्णाम। हे मूढ़, पाने की चाहत पर तो कंट्रोल लगा। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम, यल्लभसे निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मूढ़, ये जो कमाने की लालच है, इच्छा है, उस पर लगाम लगाओ, इसकी कोई सीमा नहीं है। थोड़ा मन पर अच्छी बुद्धि लाओ, जो तुम जितना मेहनत कर सकते हो, जितना तुम मेहनत कर सकते हो, जितना अपनी मेहनत के बदले कमा सकते हो उतना कमाओ, उतने में सुखी रहो और उसी पैसे से खुश होने की कोशिश करो। पड़ोसियों की संपत्ति देखकर ललचाओगे, जिंदगी भर दुखी रहोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। घर में सब कुछ है तो भी दुखी हूं क्योंकि पड़ोसी वाला चीज मेरे पास नहीं है। बाकी के प्रवचन अगले हफ्ते करेंगे इसके। ओम शांति।